वंदनीय चरण श्री शैमशेख बरेण्य श्री शास्त्री जी महाराज सभापति महोदय श्री महाराज श्री विद्वत बरेण्य श्री संचालक महोदय एवं यहाँ विराजमान गुरुकल्प सभी विद्वज्जन यत मंडली एवं वैष्णव मंडली वांछा कल्पतरु होकर के आप कृपया शक्ति का संचार करें बालक के ऊपर। विषय बहुत लंबा बहुत गहरा और यदि बीच में छोड़ दिया जाए तो जो कुछ भी वर्णन किया गया उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा, इसलिए कहीं छूते छूते बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। विषय है श्री कृष्ण भक्ति श्रीमद् भागवत और शुद्ध भक्ति के विभिन्न स्तरों का तारतम्य। श्रीमद् भागवत एक प्रतिज्ञा करती है, धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र एक प्रतिज्ञा है। शुद्धा भक्ति ही प्रोज्जित कई तव धर्म ही श्रीमद् भागवत का एक अपूर्व गुण है जो दूसरे गुणों में दूसरे ग्रंथों में नहीं है। अत्र शब्द का इस पद्य में तीन जगह विवेचन किया गया था, वेद्यम वास्तव वस्तुमत्र और सद्यो हृदय रुद्यतेत्र। इसमें पहली प्रतिज्ञा थी श्रीमद् भागवत की, श्री भागवत जी की प्रतिज्ञा है कि श्रीमद् भागवती संहिता प्रोज्जित कैतव धर्म का निरूपण करती है और प्रोज्जित कैतव धर्म का तात्पर्य है शुद्धा भक्ति। जहां शुद्ध भक्ति कह रहे हैं वहां पर अपने आप ये अर्थ निकल रहा है शुद्ध शब्द सापेक्ष है, कोई ना कोई अशुद्ध भी होगा। इसलिए श्रीमद् भागवती संहिता भक्ति के तीन स्तरों को कहीं प्रतिपादित करती हुई फिर शुद्ध भक्ति का निरूपण करती है। श्रीमद् भक्ति का एक स्तर है गौणी भक्ति, दूसरा स्तर है मिश्रा भक्ति और तीसरा स्तर है शुद्धा भक्ति। श्रीमद् भागवती संहिता ये प्रतिपादित करती हैं कि बिना भक्ति के कृपा के कर्म तो अत्यंत अत्यंत दुर्बल साधन है, वह फल नहीं दे सकता। इसलिए जब भक्ति अपने निज के फल को तो गौण रख लेती है और भक्ति के अनुग्रह के द्वारा जब कर्म जो के न्यून और असमर्थ साधनों से युक्त हैं, ब्राह्मण विद्वान नहीं है, मंत्र का उच्चारण ठीक नहीं है, पात्र प्राप्त नहीं है, वस्तु प्राप्त नहीं है, काल की शुद्धि हुई नहीं है, तो देश काल पात्र उनके द्वारा जो कर्म किए गए वे सब के सब अपूर्ण हैं, एक दुर्बल साधन है और वे सारे साधन तब पूर्ण होंगे जबकि श्री हरि नाम का आश्रय ग्रहण किया जाएगा, श्रेय कैलव चंद्र का वितरणम। तो जब भक्ति अपने प्रभाव को खप तो न्यून रख ले और अनुग्रह मात्र से कि मंत्रतः तंत्रतः शुद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्वम करोति निशुद्रम, जब कर्म के प्रभाव को प्रदान कर दे वो भक्ति हुई गौणी भक्ति। इसी प्रकार जहां पर भक्ति अपने निज का जो फल है प्रोज्जित कैतव जो धर्म है उसका तो प्रतिपादन करे नहीं, उसको तो प्रदान करे नहीं और उसके स्थान पर ज्ञानियों को केवल मोक्ष को संसार बंधन की निवृत्ति मात्र करा दे, ज्ञान को ज्ञान मात्र को प्रदान कर दे, उस भक्ति का नाम भी है गौणी भक्ति। भक्ति का एक अत्यंत प्रारंभिक स्तर है, कौन छोटा है बड़ा है ये नहीं कहेंगे, एक प्रारंभिक स्तर है वो हुई गौणा भक्ति। क्योंकि ज्ञान में भी सांख्यम योगम च वैराग्यम तपो भक्तिश्च केशवे पंच पर्व विद्यासा, विद्या के पांच पर्वों के अंतर्गत भक्ति को अपनाया और बिना भक्ति के श्रेष्ठतम भक्ति मुदस्य वो क्लिश्यन्ति, उनको केवल क्लेश क्लेश मिलेगा। विवेचन में ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। भक्ति का दूसरा जो स्तर है जिसका श्रीमद् भागवती संहिता अनुरूपण करती है वो है मिश्रा भक्ति। पहला स्तर था वो था गौणा भक्ति, दूसरा स्तर है मिश्रा भक्ति। मिश्रा भक्ति की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसा हम ये चाहें कि हमको माखन तो मिले परंतु माखन के साथ साथ छाछ छाछ भी चाहिए, छाछ को छोड़ेंगे नहीं, लेंगे तो माखन ही, कृष्ण सेवा ही चाहिए, परंतु कृष्ण सेवा के साथ साथ कृष्ण सेवा के उपयोगी कुछ और भी चाहिए। उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में एक संकेत दे दिया कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। ये चार प्रकार के जो भक्त हैं ये मिश्रा भक्त हैं, मिश्र भक्त हैं, जो कि चाहते तो भक्ति हैं। आर्त होकर के गजेंद्र मृत्युपाश से मुक्ति भी चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं मृत्युपाश से मुक्ति नहीं चाह रहा हूं, मूलतः चाह रहा हूं कि लोकावरण से मोक्षम, कि मेरी बुद्धि को जिसने ढांक रखा है उस माया से मुझे मोक्ष प्राप्त हो। यहां पर संसार बंधन की निवृत्ति भी चाह रहे हैं और साथ के साथ में चाह रहे हैं कि एकांत नो यस्य कंचनार्थम वांछन्ति। मुख्य रूप से तो चाहा गया कृष्ण सेवा ही, परंतु कृष्ण सेवा के साथ साथ पैर में जो गाह की पाश पड़ी है उससे भी मुक्ति चाही जा रही है, वो है अर्थ। दूसरे भक्त हैं जिज्ञासु, उनके लिए श्री भक्त रसामृत सुंदरकार श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने आपने आदेश दिया, जैसे कि शौनकादिक ऋषि जिज्ञासु हैं, चाह रहे हैं कृष्ण भक्ति परंतु साथ के साथ कृष्ण भक्ति के परिष्कार के लिए ज्ञान भी चाह रहे हैं, ब्रह्म का भी विवेचन चाह रहे हैं, परमात्म तत्व का भी विवेचन चाह रहे हैं, भक्त तत्व का भी, भगवत तत्व का भी विवेचन चाह रहे हैं। तीसरे भक्त हैं अर्थार्थी। ध्रुव चाह तो रहे हैं कृष्ण चरणारविंद की ही अभिलाषा के वास्त्रैव वस्तक मनुग्रह कातरोस्मान, परंतु साथ के साथ में जो दृष्टांत दिया उस दृष्टांत में गाय तो चाहिए परंतु गाय के साथ साथ गाय का दूध भी चाहिए। कृष्ण कृपा से प्राप्त होने वाले कृष्ण सेवोपयोगी धन को चाह रहे हैं, स्वर्ग नहीं चाहा, स्वर्ग को चाहते तो गौण भक्त हो जाते। चाह तो रहे हैं मुख्यतः कृष्ण भक्ति ही, परंतु कृष्ण भक्ति के साथ साथ कहीं राज्य सुख भी मिल जाए, निज माँ का निज बात्सल ही दुग्ध रूप में परिणत हुआ है और वो साथ के साथ में कुछ और भी दे दे। और चौथे भक्त हैं ज्ञानी सनकादिक, जो कि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यत पाद पंकज पलाश विलाश भक्त्या कर्माशयम ग्रथित मुद्ग्रथेन्त संतः तद्वन्न रिक्त मतयः। एक भद्र गाली दे दी कि जो श्रेष्ठ भक्ति का त्याग कर रहे हैं, चरण पलाश की जो भक्ति है उससे जैसे कर्माशय मन की पवित्रता होती है ऐसी किसी दूसरी वस्तु से नहीं होती है। ज्ञान भी चाह रहे हैं परंतु मुख्यतः भक्ति चाह रहे हैं, परंतु भक्ति की सुदृढ़ता के लिए ज्ञान को भी चाह रहे हैं। परंतु ये जो भक्ति है ये भक्ति भी मिश्रा ही हुई। भक्त का ये जो गौणी और मिश्रा जो स्तर था उस स्तर से बढ़कर के फिर एक स्तर सामने आया और वो स्तर है निर्गुणा भक्ति, जिसको उत्तमा भक्ति कहा, निर्गुणा भक्ति कहा, केवला भक्ति कहा, शुद्धा भक्ति कहा, कई कई उसके नाम दिए। और वो भक्ति का जो स्तर है वो है कि आही तो क्या, जैसे कि अभी अभी श्री विद्वद्वरेण्य ने यहाँ पर निरूपण किया था, आही तो क्या व्यवहता या भक्ति पुरुषोत्तम है, सालोक्य साक्ष्य सामीप्य सारूपेयिकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम। भक्ति का स्वरूप लक्षण है सेवनम, भक्ति का तटस्थ लक्षण है क्या अव्यभिता, आही तो क्या अहितुकी और अव्यवहित होना, ये है भक्ति का स्वरूप लक्षण, वो तटस्थ लक्षण। इस तटस्थ लक्षण को प्रकट करते हुए भगवत भक्ति जिस समय प्रवृत्त हो रही है, उस समय यदि चार प्रकार की मुक्ति सेवा नहीं मिल रही है, मिल रही है अन्य मुक्ति मिल रही है, तो वो भक्ति कहीं भी उससे ढकी हुई नहीं है, प्रभावित नहीं हो रही है। अतः अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्म से अनावृत है, अन्याभिलाषिता तो उसमें है नहीं, परंतु ज्ञान कर्म भी कभी उसे आवृत करने वाले नहीं है। ऐसी जो भक्ति है वो भक्ति का एक स्तर हुआ, वो हुआ शुद्ध स्तर। अब यहां से तो विषय प्रारंभ होता है, शुद्धा भक्ति का स्तर, ये तो शुद्धा भक्ति तक तो पहुंचे, अब यहां के बाद में शुद्धा भक्ति के विभिन्न स्तरों की बात प्रारंभ होगी। अब मेरा समय तो बीत गया, केवल इतने इतने में तो बस प्रणाम। अच्छा ठीक है, मुझे आदेश मिला है इसलिए थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूं कि जो शुद्धा भक्ति का जो स्तर है कि जिसमें किसी कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है, अन्याभिलाषता शून्यता जिसमें है, अर्थात अहितु की भक्ति का कोई दूसरा हेतु नहीं है, भक्ति का हेतु है कृष्ण चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति, सेवा के अतिरिक्त, सेवा सुख के अतिरिक्त जहां पर कोई दूसरा हेतु नहीं है, सेवा के लिए ही सेवा की गई, ऐसी स्थिति में जो साधन भक्ति है वह साधन भक्ति और साध्य भक्ति दो अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। आम तो सदा ही मीठा था, भोजन तो सदा ही मीठा था, परंतु जिसकी जीभ रोग से युक्त हो गई वह उस मिठाई के स्वाद को नहीं ले रहा था, परंतु जैसे जैसे उसने भजन किया, यथा यथात्मा परमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाविधान, वैसे ही वैसे उसे उस मिठास में जो स्वरूपतः मीठी थी उस मिठास में उसे स्वाद आने लगा। ऐसी स्थिति में जो शुद्धा भक्ति है जो कि अन्याभिलाषता शून्य है, जिसमें ज्ञान और कर्म से जो आवृत नहीं है, अहितुकी और अव्यवहिता है, जिसका स्वरूप लक्षण है कृष्ण सेवा, और जिसमें चार प्रकार की मुक्ति दी जाए, उनको कदाचित इसलिए स्वीकार किया जाए कि उन चार प्रकार की मुक्तियों के द्वारा सेवा संभव है, परंतु एकत्व नाम की जो पांचवी मुक्ति है सायुज मुक्ति, उसको तो कहीं दूर से भी नहीं छुआ जाए, उस सायुज मुक्ति से तो अत्यंत अत्यंत डरा जाए। कदाचित गजेंद्र को भगवान अपने सभी का रूप दे लें तो भगवान चतुर्भुज रूप ग्रहण कर लें, गोकर्ण चतुर्भुज रूप ग्रहण कर लें, श्री ध्रुव वैकुंठ लोक को ग्रहण कर लें, ध्रुवलोक को ग्रहण कर लें, साष्ट सामुप्य सारूप्य यदि भक्ति सहित मिले हैं तो उनको कदाचित ग्रहण कर लिया जाए, परंतु सायुज जो मुक्ति है उसको तो कभी भी चाहा ही नहीं जाए, क्योंकि उसमें सेवन नहीं बन सकता है, बिना मत्सेवनम, जो सेवन की जो प्रवृत्ति है वो सायुज में प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए सायुज को त्याग करके कृष्ण सेवा सहित इन चार मुक्तियों को कदाचित स्वीकार भी किया जा सकता है, परंतु और वे भी शुद्ध भक्ति की सीमा में भी आ जाएंगे, परंतु सायुज मुक्ति तो कभी भी भक्ति की सीमा में आएगी ही नहीं। ऐसी जो शुद्धा भक्ति है जो कि आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन है, आनुकूल्यन का तात्पर्य है कृष्ण की रुचि नहीं, कृष्ण को सुख देने की कामना, कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति नहीं, बल्कि कृष्ण को सुख देने की जो प्रवृत्ति है वो जैसे मैया कन्हैया को बांध रही हैं दामोदर लीला में। अब कन्हैया की रुचि तो ये है कि मैं निबधूं, तो कोई ये कह सकता है कि मैया का कन्हैया को बांधना भक्ति नहीं है? कौन कहेगा? महाअपराध हो जाएगा। क्या कोई भी विद्वान ये कह सकता है कि मैया जो कन्हैया को बांध रही हैं वो भक्ति नहीं है? वो तो सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए कृष्ण की रुचि भी जो भक्ति नहीं है, आनुकूल्य का तात्पर्य है कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति नहीं, बल्कि कृष्णाय सुखप्रद प्रवृत्ति, कृष्ण को जिसमें सुख देने की भावना विद्यमान हो, कृष्ण के कल्याण की भावना विराजमान हो, मैया बांध नहीं है पंत कृष्ण को सुख देना चाह रही, प्रिय सुख की कामना जिसमें विद्यमान है, जिसमें अपने सुख की कामना विराजमान नहीं है, उसको हम कहेंगे आनुकूल्य। युद्ध में कृष्ण लड़ रहे हैं उस समय तो ये चाहते हैं कृष्ण कि जरासंध मुझे गाली दे, नहीं तो वीरता ही नहीं आएगी, कृष्ण में जोश ही नहीं उठेगा। युद्ध में जब तक शत्रु सामने से प्रहार नहीं करे तब तक कृष्ण में जोश ही नहीं आएगा। तो कृष्ण चाह रहे हैं कि मुझे गाली मिले, परंतु कोई कहेगा क्या कि जरासंध के द्वारा कृष्ण को जो गाली दी गई वो भक्ति है? कोई नहीं कहेगा। कृष्ण जहां बधना नहीं चाह रहे हैं वो चीज भक्ति है, कृष्ण जिस चीज की इच्छा कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है। इसलिए रोचमाने जो प्रवृत्ति है वो भक्ति नहीं है। कृष्ण को सुख प्रदान करने की सेवा की कामना जहां पर विराजमान है उसका नाम भक्ति है। और ये जो भक्ति है इस भक्ति के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। भक्ति तो आह्लादनी शक्ति की ही सारांश रूप होकर के विराजमान है। उसके आस्वादन के स्तर में तीन भेद हैं। अब यहां शुद्धा भक्ति जो है उसके भेद प्रारंभ होते हैं। आस्वादन के स्तर के तीन भेद हैं और वो आस्वादन के स्तर के तीन भेद हैं। एक है साधन भक्ति, दूसरी है भाव भक्ति और तीसरी है प्रेम भक्ति। भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकाम तनुम। भक्ति के द्वारा भक्ति उत्पन्न होती है। सालोक्य शास्त्र सामीप्य जहां पर नवधा भक्ति की वहां पर इति पुंसार्पिता वृष्णौ भक्तिश्चे नवलक्षणा। नवधा भक्ति के विस्तार में नहीं जाएंगे। जीव के द्वारा वृष्णौ भक्तिश्चे नवलक्षणा, वृष्णु में जो नौ प्रकार की भक्ति की गई, क्रियते भगवती अद्धा, वहां पर जो साक्षात शब्द दिया अद्धा शब्द दिया उसका तात्पर्य यह है कि जिस जो भक्ति स्वरूपभूत होकर के विराजमान है उस भक्ति को ही साधन भक्ति में प्रधान कहेंगे। अब जो साधन भक्ति का जो क्रम है उस साधन भक्ति के भी फिर तीन भेद हो गए, उसके स्तरों में भी तीन भेद आ गए। शुद्धा भक्ति के तीन भेद, तीन स्तर हैं। शुद्धा भक्ति का एक स्तर है साधन भक्ति, दूसरा स्तर है भाव भक्ति, तीसरा स्तर है प्रेम लक्षण भक्ति। साधन भक्ति के द्वारा परिपाक को प्राप्त करके प्रेम की प्राप्ति होगी, परंतु जो साधन भक्ति है उसके भी तीन स्तर हैं। एक स्तर है आरोप सिद्धा भक्ति, दूसरा है संग सिद्धा भक्ति और तीसरा है स्वरूप सिद्धा भक्ति। इसीलिए अब इनके विवेचन में नहीं पढ़ूंगा, आगे बढ़ना है और अंत तक पहुंचना है, नहीं तो सारी बात खत्म हो जाएगी, उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा जितना विवेचन किया है उसका। ऐसी स्थिति में जो स्वरूप सिद्धा भक्ति है उसी के लिए श्री प्रहलाद जी के वचन है कि क्रियते भगवत्यद्धा। साक्षात रूप से जो स्वरूपभूता भक्ति है वही भक्ति है। जो कर्म का समर्पण किया गया वो कर्मार्पण रूप आरोप सिद्धा भक्ति भक्ति नहीं है। श्री कृष्ण सेवा के लिए जो नवग्रह और षोडश मातृका भी की भी कभी कभी पूजा कर ली गई वो जो भक्ति है वो संग सिद्धा भक्ति होगी, वो भी स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं है। परंतु जो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास्य हैं ये है स्वरूप सिद्धा भक्ति, क्योंकि ये साक्षात कृष्ण का अनुशीलन है। ये भक्ति जिस समय उत्पन्न होती है तो वो होगी श्री कृष्ण कृपा के द्वारा, और उसकी फिर साधन भक्ति की जो सीमाएं रहेंगी वो होंगी आदौ श्रद्धा तत् साध संग तत्व भजन क्रिया तत्व अनर्थ निवृत्तिश्च तत्व निष्ठा तत्व रुचि अथाशक्ति तत्व भाव तत् प्रेमाभ्युदंचति साधका नाम अयम प्रेम प्रादुर्भाव भवित कर्म। ये साधन भक्ति की भूमिका हुई और इन भूमिकाओं को साधक पार करते हुए जब साधन भक्ति में प्रवृत्त होगा कृत साध्या भवे साध्य भावासा साधनाविधा, इंद्रियों के द्वारा जो कार्य कर रहा है उस स्थिति में भी उसकी जो कृष्ण सेवा है उस कृष्ण सेवा को प्रेरित करने वाली जो वस्तु है वो प्रेरित करने वाली वस्तु दो प्रकार से होगी, दो प्रकार से प्रवृत्त होगी। यहां पर भी फिर भेद आ गए। साधन भक्ति का जो स्तर है उसमें भी दो भेद आ गए, और एक भेद हुआ कि जहां पर यत्र रागानवाप्तत्वात् प्रवृत्ति उपजायते शासनादेव शास्त्रस्य, जहां पर भगवत शास्त्र की आज्ञा के कारण भक्ति में प्रवृत्ति हुई, डंडे के जोर से जहां पर प्रवृत्ति हुई उस भक्ति का नाम होगा वैधि भक्ति, मर्यादा भक्ति। परंतु जहां पर दृष्टे कृष्णादि माधुर्ये श्रुते धीर यदपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिम च तल लोभोत्पत्ति लक्षणम, जिस समय लोभ के कारण प्रवृत्ति होगी श्री ब्रजगोपिकागणों के ब्रज भक्तिजनों के उस प्रेम की महिमा का दर्शन करके जब साधक के हृदय में लोभ उत्पन्न होगा और उस लोभ के कारण जो भक्ति उत्पन्न होगी वो भक्ति है लोभजन्य भक्ति, और वह लोभ ही कारण है राग भक्ति की प्राप्ति का। जो विराजंती अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिशु, जो निज परिकर में नित्य विराजमान हैं और उन रागात्मक परिकर के आनुगत्य को, रागात्मक जो परिकर है उसके आनुगत्य को ग्रहण करके जो भक्ति की जाएगी, उस भक्ति में जो स्वाद है वो स्वाद शास्त्र की ऐश्वर्य के जोर से की जाने वाली भक्ति में नहीं है। क्योंकि शास्त्र के ऐश्वर्य, शास्त्र की आज्ञा के भय से जो भक्ति की गई उसमें कहीं ऐश्वर्य की खटास है, उसमें माधुर्य का आस्वादन नहीं है। और जो मीठा चित्त है, कोमल चित्त है, उस माखन में खटास मिलाना कोई नहीं चाहेगा। ऐसी स्थिति में केवल प्रियजनों के कृष्ण तद्भक्त कारुण्य मात्र लाभिक हेतु था, कृष्ण और कृष्ण भक्तों के कारुण्य मात्र को जहाँ पर धारण करके भक्ति में प्रवृत्ति होगी वो है रागानुगा भक्ति। और उस रागानुगा भक्ति जिसको पुष्टि भक्ति कहा गया, पुष्टि मार्ग तया कैश्चित इयम रागानुगोच्यते, जिसको पुष्टि मार्ग कहा गया, ऐसी जो भक्ति है उस भक्ति का जो आस्वादन, वो आस्वादन कुछ भिन्न होगा। ऐसी साधन भक्ति ही क्रम अवस्था को प्राप्त होकर के, अब यहाँ पर विवेचन नहीं करूँगा कि श्रद्धा क्या है, साधसंग क्या है, अनर्थ निवृत्ति कैसे होती हैं, निष्ठा क्या है, रुचि क्या है, आसक्ति क्या है, इन सब का विवेचन करने का यहाँ पर समय नहीं है, वरना मुझे मेरे हाथ से सामने से माइक खींच लिया जाएगा इसे वो सब अपराध नहीं अपराध हो जाएगा यहाँ विद्युत जनों के सामने। इसलिए शास्त्र की जो स्थिति है वो स्थिति है, मन उन सब के विवेचन को छोड़ते हुए जिस समय भाव की अवस्था उत्पन्न होगी, उस भाव की अवस्था की भी जो शुद्धा भक्ति के भाव की अवस्था के जो स्तर हैं उनमें भी अंतर होगा। एक भाव भक्ति उत्पन्न होगी रागानुगा साधन से उत्थित, एक भाव भक्ति उत्पन्न होगी वो होगी वैधी साधनोत्त, जहां पर रागानुगा साधनोत्त जो भक्ति होगी, जो भाव भक्ति होगी उसका एक स्तर है, और उस स्तर में जो स्वाद है वो स्वाद किसी दूसरी जगह नहीं है। इसीलिए शुद्धा भक्ति के अधिकारी श्रीमद् वृत्र कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं चाह रहा हूं कि अहम तब पादैक मूल दासानुदास, उस दासानुदासता में जो स्वाद है वो स्वाद कहीं दूसरी जगह नहीं है। ऐसी स्थिति में जो रागानुगा भक्ति का के द्वारा जो भाव की प्राप्ति हुई वो कुछ अद्भुत है, और वो रागानुगा भक्ति, वो जो भाव भक्ति है, वो भाव भक्ति कोई अद्भुत वस्तु है। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश साम्य भाक रुचिविश्चित्त मासण्य कृदसौ भाव उच्यते, भाव की कुछ परिभाषा दी वैष्णव आचार्यों ने कि जहां पर शुद्ध सत्व विशेषात्मा जो प्रेम है, ऐसे प्रेम का एक किरण के रूप में वो भाव भक्ति विद्यमान है, और उस प्रेम के बाद उस भाव भक्ति के ही परिपाक को प्राप्त होकर के फिर जाकर के साधक को शुद्धा भक्ति के अंतर्गत प्रेम की प्राप्ति होगी। श्री महाराज जी आगे निरूपण करेंगे, शास्त्री जी महाराज, कि प्रेम क्या वस्तु है, फिर प्रेम के आगे जाकर के कहाँ आसक्ति है, कहाँ व्यसन की स्थिति है, उन सबका वर्णन श्री बल्लभाचार्य भक्तिवर्धिनी में उनका प्रतिपादन करेंगे। परंतु वो जो प्रेम प्राप्त हुआ, वह प्रेम बार बार मुझे संकेत किया जा रहा है, इसलिए बात को आप समाप्त कर दूं यहीं, कि वो जो प्रेम है उस प्रेम की अपनी सीमाएं हैं, और वो प्रेम वृद्धि क्रम में प्राप्त होकर के स्नेह मान प्रणय, अब इनकी व्याख्या नहीं करूंगा, ये शुद्ध भक्ति के विभिन्न स्तर हैं और इनमें तारतम्य है। तारतम्य का मतलब है कि यूं तो जो जिस भक्ति में है उसे वही भक्ति सर्वश्रेष्ठ लगेगी, परंतु जिसकी जहां रुचि हो गई उसे वही भक्ति सर्वश्रेष्ठ लगेगी, परंतु तटस्थ दृष्टि से, शास्त्र दृष्टि से यदि कोई विचार करे तो इनमें फिर तारतम्य प्राप्त होगा। कौन तर है, कौन तम है, तर और तम की जो भावना है वो तब प्राप्त होगी जबकि शास्त्रीय दृष्टि से इनमें विचार किया जाए। व्यक्ति की दृष्टि से विचार किया जाएगा तो जो सेवा कर रहा है श्री कृष्ण के द्वारपाल बनकर के, उसकी भी भक्ति उतनी ही पूजनीय है जितनी कि को जो अंग सेवा कर रहा है। दोनों की सेवाओं में कोई अंतर नहीं है, दोनों के प्रेम में भी कोई अंतर नहीं है। तारतम्य जो तटस्थ खड़ा हुआ है वो व्यक्ति तारतम्य को देखेगा, इसलिए जहां पर यह कहा गया तारतम्य, भक्ति के विभिन्न स्तरों में तारतम्य, वहां पर फिर स्तर का यदि विवेचन किया जाए तो फिर वो जो स्तर है वो स्तर प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग और महाभाव की अवस्था पर पहुंचेगा। तो एक स्थिति पहुंची महाभाव की अवस्था पर, उस महाभाव की अवस्था को प्राप्त करने के लिए फिर प्रेम के स्तरों का विचार करना पड़ेगा। कोई प्रेम है साधारण रति वाला, कोई प्रेम है समंजसा रति वाला, कोई प्रेम है समर्था रति वाला। अब करते रहिए विवेचन। कुब्जा की रति साधारण रति है, श्री द्वारका में महर्षियों की जो प्रीति है तारतम्य करते रहिए, तारतम्य स्थापित करते रहिए, वो समंजसा रति है। और जहां पर यत्र किंचित विशेष मापन्ना संभोग इच्छा है आभितः रत्या तादात्म्य मापन्ना सा समर्थे भण्यते, जहां पर संभोग इच्छा रति के साथ में तादात्म्य प्राप्त करके, कृष्ण सेवा के साथ में तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान है, वो है समर्था रति। और उस समर्था रति में श्री समर्था रति स्वरूपा महाभाव स्वरूपा है श्री स्वामिनी, और उन श्री ब्रजगोपिकागण, और उन ब्रजगोपिकागणों में भी जो मदीयता भाव वाली गोपिकागण हैं, मधुस्नेह गोपिकागण हैं, उनके प्रेम का क्या कहना, और उन मधुस्नेहाओं में भी श्री राधिका के प्रेम का क्या वर्णन करना, और श्री स्वामिनी के भी प्रेम में मादनाक्ष महाभाव दशा में जो स्थिति है उसका क्या कहना। तारतम्य का निरूपण कीजिए, अंत में जाकर के कहीं रुकना पड़ेगा तो उस मादनाक्ष महाभाव स्वरूपा श्री किशोरी जी के श्री चरणारविंद में ही प्रणत करके वहीं वाणी मौन हो जाएगी, न बोलने वाले को बोलने दिया जाएगा, न सुनने वाला आगे कुछ सुनना चाहेगा, बोलने वाले के भी मुंह के ऊपर हाथ रख दिया जाएगा और सुनने वाला इससे बढ़कर के कोई दूसरी वस्तु सुनना नहीं चाहेगा। उसी शुक्रिया जी के प्रेम के प्रति कोट कोट बढ़ेगा।